नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत की अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संघर्ष की स्थिति पर कड़ी नजर। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नए H-1B वीजा पर लगाए गए $1,00,000 के शुल्क को चुनौती देते हुए मुकदमा दायर किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वे यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए हंगरी में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। और बैडमिंटन में लक्ष्य सेन डेनमार्क ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थिति पर भारत की कड़ी नजर है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में कहा कि ये स्पष्ट है कि पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों को पनाह देता है।
हम स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। तीन बातें स्पष्ट हैं। पहली, पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों को पनाह देता है और आतंकवादी गतिविधियों को प्रायोजित करता है। दूसरी, अपनी आंतरिक विफलता के लिए अपने पड़ोसियों को दोषी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। और तीसरी, पाकिस्तान अफगानिस्तान द्वारा अपने क्षेत्रों पर संप्रभुता का प्रयोग करने से क्रुद्ध है। भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
श्री जायसवाल ने काबुल में भारतीय मिशन के बारे में कहा कि भारत का तकनीकी मिशन जून 2022 से काबुल में कार्यरत है। उन्होंने बताया कि अगले कुछ दिनों में इसे दूतावास में परिवर्तित कर दिया जाएगा। ब्रिटेन के नायरा ऊर्जा कंपनी पर नवीनतम प्रतिबंधों के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिटेन किसी भी एकतरफा प्रतिबंध का समर्थन नहीं करता है। उन्होंने कहा कि भारत अपने नागरिकों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए ऊर्जा सुरक्षा के प्रावधान को सर्वोपरि मानता है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारतीय कंपनियां समग्र बाजार स्थितियों के अनुसार पूरी दुनिया से ऊर्जा आपूर्ति प्राप्त करती हैं। उन्होंने कहा कि ऊर्जा व्यापार के बारे में दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बिश्केक में उज्बेकिस्तान की सुरक्षा परिषद के सचिव विक्टर मखुमदोव से भेंट की। किर्गिज गणराज्य में भारतीय दूतावास ने बताया कि दोनों पक्षों ने सुरक्षा और खुफिया सहयोग में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। दोनों ने अफगानिस्तान में सुरक्षा स्थिति पर भी विचार विमर्श किया। रक्षा और संपर्क संबंधी मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। श्री डोभाल ने कजाकिस्तान की सुरक्षा परिषद के सचिव गिजार्द डोरेनबेकोविच निर्दुले रूप से भेंट की। भारतीय दूतावास ने बताया कि दोनों पक्षों ने सुरक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग की समीक्षा की। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि G20 को महत्वाकांक्षा और कार्यान्वयन के बीच एक सेतु का काम करना चाहिए, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक राष्ट्र के योगदान का सम्मान हो और प्रत्येक राष्ट्र की क्षमता भी बढ़ सके। वे कल दक्षिण अफ्रीका में G20 जलवायु एवं पर्यावरणीय स्थिरता कार्य समूह की मंत्री स्तरीय बैठक के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री यादव ने कहा कि सार्थक और ठोस परिणाम प्राप्त करने के लिए समग्र सामाजिक दृष्टिकोण और लोगों को पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनानी होगी। अमरीकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने उत्कृष्ट कुशल विदेशी कर्मचारियों के लिए नए H-1B वीजा पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगाए गए $1,00,000 के शुल्क को चुनौती देते हुए मुकदमा दायर किया है। एक रिपोर्ट।
चैम्बर ने कहा कि ये शुल्क H-1B वीजा कार्यक्रम पर निर्भर व्यवसायों को अपनी श्रम लागत में बड़ी वृद्धि करने या कम कुशल कर्मचारियों को नियुक्त करने के बीच चयन करने के लिए बाध्य करेगा। H-1B शुल्क में वृद्धि को संघों, नियोक्ताओं और धार्मिक समूहों द्वारा कैलिफोर्निया की एक संघीय अदालत में भी चुनौती दी जा रही है। श्री ट्रंप ने पिछले महीने H-1B वीजा आवेदनों पर $1,00,000 का वार्षिक शुल्क लगाने के एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। अमरीकी प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया कि ये भारी शुल्क केवल नए H-1B वीजा आवेदनों पर लागू होगा। ये शुल्क मौजूदा H-1B वीजा धारकों या नवीनीकरण पर लागू नहीं होगा। इस कदम से भारतीय तकनीकी पेशेवरों और धन प्रेषण के प्रवाह पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में गंभीर चिंता उत्पन्न हो गई है। सभी H-1B वीजा में से लगभग 71% वीजा भारतीय नागरिकों को दिए जाते हैं। विश्व दर्पण के लिए सरफिरोजी।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए वे हंगरी में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के उच्च स्तरीय सलाहकार अगले सप्ताह विदेश मंत्री मार्को रूबियो के नेतृत्व में बैठक में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि बैठक का स्थान अभी तय नहीं हुआ है। ट्रंप ने यह बयान पुतिन के साथ अपनी फोन कॉल के बाद दिया। ट्रंप ने इस कॉल को अच्छा और उपयोगी बताया। ट्रंप ने यह भी कहा कि वे कल ओवल ऑफिस में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोडिमीर ज़ेलेंस्की से मिलने के दौरान पुतिन के साथ अपनी बातचीत पर चर्चा करेंगे। अमेरिका के मैरीलैंड में एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन पर गोपनीय दस्तावेज का दुरुपयोग का आरोप लगाया है। न्याय विभाग के अनुसार बोल्टन ने निजी ईमेल के माध्यम से गोपनीय जानकारी प्रसारित की और अपने घर में अवैध रूप से खुफिया दस्तावेज रखे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के जहरी क्षेत्र में पाकिस्तान की सेना द्वारा की गई हवाई बमबारी में बच्चों सहित लगभग 6 बलूच नागरिक मारे गए। ये भयावह घटना जहरी में बढ़ते मानवाधिकार संकट के बीच हुई है। हफ्तों से चल रहे पाकिस्तानी सैन्य अभियान में कई लोग मारे गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक हृदय विदारक वीडियो साझा करते हुए बलूच राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था ने आक्रोश व्यक्त किया। वीडियो में शोकाकुल बुजुर्ग ने बताया कि कैसे हवाई हमले में उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। मानवाधिकार संस्था ने कहा कि ये क्रूर कृत्य बलूच लोगों पर की जा रही व्यवस्थित हिंसा का एक और उदाहरण है। मानवाधिकार संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से आग्रह किया है कि वे जहरी में बिगड़ती स्थिति पर तत्काल ध्यान दें। पाकिस्तान में अफगान शरणार्थियों ने सीमा पर लड़ाई बढ़ने के बाद से पुलिस उत्पीड़न, गिरफ्तारियों और बेदखली में वृद्धि का आरोप लगाया है। इससे हजारों विस्थापित परिवारों में भय और अनिश्चितता गहरा गई है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अधिकारियों ने प्रवासियों को क्वेटा में अपने घर और दुकानें खाली करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया है। देश में अवैध रूप से रहने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत दौरे पर थे और अफगान पाकिस्तान सीमा पर भारी गोलीबारी हो रही थी। और अब खेल जगत के हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार।
डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज भारत के लक्ष्य सेन का मुकाबला फ्रांस के एलेक्स लिनियर से होगा। ओडेंस में ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 5:10 से खेला जाएगा। पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद रियान आर्दियांतो और रहमत हिदायत की जोड़ी से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 4:30 से खेला जाएगा। इसके अलावा ICC महिला क्रिकेट विश्व कप आज दक्षिण अफ्रीका का सामना श्रीलंका से होगा। कोलंबो में ये मैच दोपहर बाद 3:00 से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात विशाखापट्टनम में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 10 से हराकर अंतिम 4 में जगह बना ली। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंच गई है।
नेपाल सरकार ने भारत और नेपाल के बीच दो प्रमुख सीमा पर ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण के लिए 3 अरब नेपाली रुपए के इक्विटी निवेश को मंजूरी देने का निर्णय लिया है। ये निर्णय दोनों देशों के बीच बिजली संबंधों को मजबूत करेगा और दीर्घकालिक ऊर्जा व्यापार को बढ़ावा देगा। नेपाल फोरम ऑफ एनवायरमेंट जर्नलिस्ट की पूर्व अध्यक्ष रोशनी अधिकारी पाठक को वर्ष 2026-2029 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की पश्चिम और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय परिषद सदस्य चुना गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारतीय उच्चायोग ने इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के साथ कल लिबरेशन वॉर म्यूजियम ऑडिटोरियम में फकीर लालन शाह की 135वीं पुण्यतिथि पर विशेष संगीत कार्यक्रम लालन संध्या का आयोजन किया। कार्यक्रम में लालन ने गीती की रानी फरीदा परवीन को भी भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में पूरे ढाका से कलाकारों, विद्वानों, संगीत प्रेमियों, युवाओं ने भाग लिया। भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने भारत और बांग्लादेश के बीच गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्रालय ने कहा भारत की अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संघर्ष की स्थिति पर कड़ी नजर। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नए H-1B वीजा पर लगाए गए $1,00,000 के शुल्क को चुनौती देते हुए मुकदमा दायर किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वे यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए हंगरी में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। और बैडमिंटन में लक्ष्य सेन डेनमार्क ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।